बात तो आपकी सही है, आपने हमारी शैतानी बेटी को बहुत अच्छे से संभाला है। हमें तो बड़ी चिंता लगी रहती थी कि उन्हें जाने कैसा जीवन साथी मिलेगा, वो कैसे अपना घर परिवार संभाल पाएंगी, पर आपने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। जहां जयंती जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अन्वय चने की झाड़ पर चढ़ बैठा और खुद पर ही इतराने लगा, वहीं अंतरा का तन बदन गुस्से से सुलग उठा। माँ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इसमें इस कनखजूरी ने क्या किया है? बल्कि मैंने इसे और इसके परिवार को संभाला है, वरना कौन पागल लड़की इससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद करती? भाई, बात तो हमारी बहू की भी सही है, उन्होंने हमारे बेटे और परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है, काबिले तारीफ काम किया है, हमें तो अपनी बहू पर नाज है। अभिजीत जी ने भी अपनी बहू का समर्थन किया, जिस पर अन्वय एक बार फिर खुद पर इतराने लगा। तो इसका क्रेडिट भी मुझे ही जाता है, क्योंकि आपके लिए यह बहू भी मैंने ही पसंद की थी और इसे शादी के लिए मनाया भी मैंने ही था, वरना ये मोहतरमा तो मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं थी। अन्वय ने तिरछी निगाहों से अंतरा को देखा और गुस्से से भड़की अंतरा तुनकते हुए बोली, उसकी वजह भी तुम थे, इसलिए मुंह मत खुलवाओ मेरा और हटो मेरी माँ के पास से, वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अंतरा तेज कदमों से चलते हुए जयंती जी के पास चली आई और उनके बगल में बैठे अन्वय को गुस्से में खदेड़ दिया, पर वो ढीठ जैसे वहीं डटा रहा। माँ, देखिए आपकी बेटी आपके दामाद से कैसे बात करती है, जरा भी इज्जत नहीं करती मेरी। अन्वय ने इनोसेंट सी शक्ल बनाकर तुरंत ही अपनी प्यारी सासू माँ से खुद पर होते अत्याचारों की शिकायत लगा दी थी और उन्होंने अंतरा को डांट भी लगा दी थी। अंतरा, गलत बात बेटा, अन्वय पति है आपके, उनसे इज्जत से बात किया करो। अंतरा उनकी बात सुनते ही भड़क उठी। पहले अपने इस दामाद से कहिए कि इज्जत करवाने वाला काम किया करे, जब देखो जानकर मुझे छेड़ता है और बदले में मुझसे उम्मीद करता है कि मैं सती सावित्री नारी बनकर उसे अपने सरमाथे पर बिठाऊंगी। अंतरा भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, अन्वय जानकर हमेशा ऐसी हरकतें करता जिससे वो गुस्सा करे, जानकर उसे छेड़ता था। अपनी करतूत पर से पर्दा उठते देखकर बेचारा अन्वय पल भर को सकपका गया। फिर उसने तुरंत ही अंतरा को नज़रअंदाज करते हुए जयंती जी का ध्यान मुद्दे से भटकने से बचाया। माँ, आप इसे छोड़िए और मुझे बताइए, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना? इस बार उसकी बात पर जयंती जी ने हामी भरी और वो उनके गले लगकर जानकर अंतरा को चिढ़ाने लगा। अंतरा, जिसका पारा पहले ही हाई था, वो अन्वय की इस हरकत पर बुरी तरह खींच उठी और गुस्से में नथुने फुलाते हुए नाराजगी से बोली, माँ ये गलत बात है, मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे छोड़कर आपने इसे गले से लगाया है, आप क्यों नाराज हो रही हैं? आप भी आ जाइए, हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, माँ तो अपने हर बच्चे से बराबर प्यार करती है, जयंती जी ने सौम्यता से जवाब दिया। अंतरा ने गुस्से भरी नजरों से अन्वय को घूरा और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। कोई कुछ भी कहे, पर मेरी माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा। अंतरा ने तिरछी निगाहों से अन्वय को घूरा जैसे कुछ जता रही हो और उसे यूं जलते देखकर अन्वय मुस्कुरा उठा, जिससे अंतरा और ज्यादा खींच उठी और उसने बुरा सा मुंह बना लिया। बाकी सब उनके बचपने भरी लड़ाई देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर अंतरा को जयंती जी की गोद में सर रखे देखकर अहाना के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए। माँ, वो हमारी जगह है, सच तो कहा था उसने, अंतरा गले लग जाती थी, गोद में सर रखना तो उसे पसंद था। अंतरा को जयंती जी की गोद में सर रखे देखकर अहाना ने नाराजगी भरे स्वर में शिकायत लगाई और जयेश जी ने अपनी लाडली बेटी के लिए अपनी बाहों को फैला दिया। आप इधर आइए बेटा, अपने पापा के पास। उनके ये कहने की देर थी कि अहाना का चेहरा खुशी से खिल उठा, वो जाकर अपने पापा से लिपट गई। भले ही वो खुद माँ बन गई थी, पर उनके लिए तो वो उनकी बेटी ही थी, जिसे अपने माँ बाप की गोद में जन्नत का सुख मिलता था, और जब उनका प्यार से स्नेह भरा हाथ उसके सर पर ठहरता तो लगता जैसे दुनिया का सारा सुकून उस स्पर्श में समाया है। अहाना को छोटी बच्ची जैसे अपने पापा की गोद में सिमटते देखकर अक्षय के लबों पर भीनी सी मुस्कान उभर आई थी। अंतरा ने जहाँ रूपाली जी की गोद पर कब्जा किया, वहीं जयेश जी अपना सारा प्यार और स्नेह अहाना पर लुटाने लगे। बच गए बेचारे धृशांत और निशांत, जो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। पापा माँ, ये तो मेरे और भैया के साथ ज्यादती है, आप दोनों हमेशा अपना सारा प्यार जीजी और दी पर लुटा देते हैं, मुझे और भैया को तो पूछते ही नहीं, हम भी आपकी ही औलाद हैं, आपके प्रेम और स्नेह पर हमारा भी तो बराबर का हक है। धृशांत तो हमेशा जैसे शांत रह गया, पर निशांत फट से बोल पड़ा। जयेश जी जो बड़े ही प्यार से अहाना के सर पर हाथ फेर रहे थे, निशांत की बात सुनकर हौले से मुस्कुरा उठे। आप भी आ जाइए, हमारे लिए तो हमारे सब बच्चे बराबर हैं और हमारे स्नेह पर सबका बराबर का हक है, पर आप सबसे ज्यादा प्यार जीजी से ही करते हैं और हम सब ये बात जानते हैं कि आपके लिए सबसे पहले जीजी आती है। आपकी जीजी हमारी बेटी नहीं, गुरूर है। प्यार तो हम आप चारों से बराबर करते हैं, पर अहाना हमारी बड़ी बेटी है और दुनिया जानती है कि एक बाप का अपनी बेटी के प्रति लगाव ज्यादा रहता है, और अहाना है भी इतनी प्यारी और मासूम, इसलिए हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। उनका जवाब सुनकर अहाना और धृशांत दोनों के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई थी, जबकि अंतरा और निशांत मुंह बनाकर झूठ मूठ की नाराजगी जाहिर करने लगे थे। पल भर उन्होंने मुंह फुलाए रखा, फिर अंतरा और निशांत दोनों आकर उनकी बाहों में समा गए। धृशांत, पल्लवी बेटा, आप दोनों भी आ जाइए, बाप के स्नेह पर सब बच्चों का बराबर अधिकार होता है। हक तो माँ की ममता पर भी होता है पापा, पल्लवी ने सौम्य सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा और आगे बढ़कर जयंती जी का हाथ थामकर उनके पास बिठा दिया। अन्वय तो पहले ही पीछे हट चुका था। दृशांत जयंती जी को गोद में सर रखकर फर्श पर बैठ गया। अहाना और दृशांत एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वहीं पल्लवी पीछे से जयंती जी और जयेश जी के गले से लग गई। जयंती जी ने प्यार से उसके गाल को सहला दिया। वहीं जयेश जी ने अपना स्नेही भरा हाथ उसके सर पर रख दिया। अन्वय ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर दिया। ये परफेक्ट फैमिली थी जिसकी ख्वाहिश हर बेटा बहु बेटी करते होंगे, जहां बेटी बेटा बहु दामाद सबको बराबर मान और प्यार दिया जाता था। अन्वय अक्षय फलक की आंखों में खलिश उतर आई। उनकी आंखों में वो सूनापन और अनकही शिकायत को समझते हुए अभिजीत जी ने अपने तीनों बच्चों को अपने गले से लगा लिया। सबसे अलग बैठी रूपाली जी शुक्ला परिवार को देखते हुए मन ही मन उनकी तुलना अपने परिवार से करने लगी। ऐसा माहौल तो उन्होंने कभी अपने बच्चों को दिया ही नहीं था। आज भी उनके तीनों बच्चे उनसे दूर थे। अक्षय को साथ रहते हुए कुछ महीने बीत गए थे, पर आज भी आहाना उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकी थी। उनके खुद के बच्चों का इनसे रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था, जिसमें वो आत्मीयता का एहसास नहीं होता था। अपने स्वार्थ में अंधे होकर जो किया उसके बाद सब उनके साथ तो थे, पर उनके मन में कांठे पड़ गईं। जैसे एक बार धागे के टूटने पर वो जुड़ तो जाता है, पर उसमें गांठ रह जाती है और वो वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। वैसे ही उनके परिवार संग उनका रिश्ता भी एक बार बिगड़ने के बाद भले टूटा नहीं था, पर अब उसमें वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। रिश्ता दिल के बंधन की जगह एक औपचारिकता बनकर रह गया था। अपने हाथों उन्होंने सब बिगाड़ा था, सबको खुद से दूर किया था, तो अब शिकायत करती भी तो किससे। ये तो उनके कर्मों की सजा थी जिसे वो खामोशी से भुगत रही थी। शायद इसी सजा को भुगतने के लिए वो मौत के मुंह से लौट आई थी। काफी हद तक ठीक भी हो गई थी, पर अपने चलने फिरने की शक्ति हमेशा के लिए खो चुकी थी और साथ ही खो चुकी थी अपने पति के दिल में जगह, अपने बच्चों की नजरों में अपना सम्मान।
कुछ देर में सब बच्चे भी वहां लौट आए और हंसी मजाक का ये सिलसिला सारा दिन चला। एक दूसरे को छेड़ना, मस्ती मजाक करना, बातों का सिलसिला शुरू हुआ। शुक्ला निवास में बच्चों की शरारतों से रौनक थी और हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। हर इंसान के चेहरे पर उसकी खुशी छलक रही थी।